और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा के घर एक दिन में इतने सारे महारथियों से ज्ञान का खजाना पा रहे हैं। और आज ज्ञान का खजाना लुटाने के लिए हमारे बीच आदरणीय राजू भाई जी पहुंचे हुए हैं। हम सब जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। महायोगी, महातपस्वी, राजऋषि, राजयोगी आदरणीय राजू भाई जी का दिल की गहराइयों से इस सुंदर शाम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भाई साहब का परिचय मैं देना चाहूंगी। आपका लौकिक जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ और 1960 में आप विशेष रूप से हमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी और मातेश्वरी जगदम्बा के संपर्क में आए और विशेष रूप से मम्मा के द्वारा ही आपके घर में गीता पाठशाला का शुभारंभ हुआ। और ऐसे आध्यात्मिक परिवार में ही भाई साहब का जन्म बीता। आप 1972 से मधुबन में समर्पित रूप से अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय भाई साहब के माध्यम से परमात्मा महावाक्य बाबा की मीठी मुरली को सिंधी भाषा से हिंदी में अनुवाद करके सभी सेवा केंद्रों पर भिजवाने की जो सेवाएं शुरू हुई वो आपके द्वारा ही हुई। आप ही इस विशेष सेवा के निमित्त बने। और परमात्मा शिव बाबा से अव्यक्त रूप में आपको विशेष दिव्य बुद्धि का भी वरदान प्राप्त हुआ है। आप उसी वरदान के प्रमाण अपनी एकाग्र और कुशल बुद्धि और बड़ी दादियों की शुभ प्रेरणाओं से ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए पुरुषार्थ को सरल बनाने हेतु बाबा की मुरली में जो रोज प्रतिदिन धारणा, वरदान और स्लोगन आदि विशेष पॉइंट्स हाईलाइट करके आती हैं, उसकी सेवा भी निरंतर राजू भाई जी के द्वारा ही हम सबको प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए हम सब तालियों से भाई साहब को धन्यवाद भी देते हैं। और विशेष स्व उन्नति हेतु मासिक पत्र पुष्प जो आपके द्वारा प्रकाशित होता है हमारे पास पहुंचता है। और बाबा के जो सर्विस को देखते हुए बहुत सारे विंग्स वर्ग बनाए गए हैं, तो आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विशेष रूप से कृषि ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं। आपके द्वारा कई अभियान निकाले गए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, किसान सशक्तिकरण अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान। तो ऐसे आदरणीय भाई साहब ने विश्व की चहु दिशाओं में भ्रमण करते हुए कई देशों का, जिसमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, अफ्रीका आदि आदि कई देशों में ईश्वरीय सेवाओं हेतु भ्रमण भी किया है। और विशेष रूप से भाई साहब के पास योग का कई वर्षों का अपना अनुभव है, तो पूरे भारत देश और विदेशों में भी योग भट्टी के द्वारा बाबा के बच्चों को, ब्राह्मण परिवार को सकाश देते हैं, उनको तपाकर पावन बनाते हैं। और मैं भाई साहब के अनुभव के लिए चार लाइनें कहना चाहूंगी। बाबा की मुरली में देते हैं वरदान, बाबा की मुरली में देते हैं वरदान, स्लोगन और सार पत्र पुष्प से होता है ब्राह्मण बच्चों का तीव्र पुरुषार्थ। योगिक खेती की विधियां बतलाकर शुद्ध करवाते सबका आहार, ग्रामों के स्वर्णिम विकास का सबको देते हैं सुंदर प्लान, पावरफुल क्लास से भर देते हैं ब्राह्मण बच्चों में जान। तो ऐसे अनुभवों के धनी आदरणीय राजू भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई साहब आज हम सबको स्वार्थ से दूर परमार्थ की ओर विषय पर भरपूर करेंगे। पीछे से भी जोरदार तालियों के साथ हम भाई साहब को सुनेंगे।
ओम शांति, शांति। बाबा के इस बेहद घर में अव्यक्त मिलन के लिए जब बच्चों की महफिल आती है तो मधुबन की शोभा ही अलग हो जाती है। आप सभी इस पहले टर्न में, इस सीजन के पहले टर्न में पहुंचे हैं। बड़े उमंग उत्साह से कई बाबा के नए नए बच्चे भी आए हैं। यहाँ की अलौकिक शक्तियों का, अव्यक्ति पालना का अच्छा अच्छा अनुभव कर भी रहेंगे, करेंगे भी। बाबा ने हम सबको अनेकानेक विशेषताएं दी हैं और उन विशेषताओं को अगर हम बाबा के ही कार्य में लगाते हैं, परमार्थ के कार्य में लगाते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो बाबा भी एक विशेषता में अनेक विशेषताएं भर देते हैं। पिछले संडे को हम सबने बहुत ध्यान से बाबा के महावाक्य सुने थे। विशेषताएं परमात्म देन हैं और उन विशेषताओं को अगर विश्व कल्याण की सेवा में अर्पित कर देते हैं तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। तो आज आप सभी इस क्लास में अपने आप को बहुत सूक्ष्म चेक करना, क्या बाबा की दी हुई विशेषताएं बाबा के ही कार्य में, परमार्थ के कार्य में सफल हो रही हैं या स्वार्थ में जा रही हैं। कई बार हम अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं और उसके द्वारा हमारी कुछ व्यक्तिगत अपेक्षाएं रहती हैं, नाम मान शान उसकी इच्छाएं रहती हैं। कोई भी प्रकार की कामना रख करके अगर हम सेवा करते हैं तो सेवाएं स्वार्थ की हो जाती हैं। लेकिन हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे स्वार्थ को छोड़ परमार्थ की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि पूरे कल्प में यही एक संगम का सुहावना समय है जब स्वयं भगवान नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को उस नए विश्व के निर्माण में सहयोगी बनाया, गोल्डन चांस दिया। चाहे हम कुछ भाई बहने पूर्ण रूप से समर्पित होकर के बाबा के कार्य में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे हजारों बाबा के बच्चे अपनी प्रवृत्तियों में रहते, घर गृहस्थ में रहते, बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी परमार्थ में लगे हुए हैं। सिर्फ चेकिंग यही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। व्यक्तिगत उन्नति तो अपने आप होती ही है, लेकिन कोई वही लक्ष्य रख करके अगर कार्य करते हैं तो उसमें स्वार्थ आ जाता है। इसलिए आज मैं आपको बाबा की कुछ ऐसी मूल बातें जिनको हमारे बड़ों ने, हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल में ध्यान पर रखा और उसी आधार से संपूर्ण रीति से बाबा के कार्य में सहयोगी बनी, समर्पित हुई। क्या हम अपने व्यवहार में रहते हुए, अपनी प्रवृत्तियों को संभालते हुए जो शक्तियां बाबा ने दी हैं तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, स्थूल धन है, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, सब बाबा के कार्य के लिए, परमार्थ के लिए हम सब समर्पित करके ट्रस्टी बन करके रहते हैं, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुमने भक्ति मार्ग में एक गायन किया था, आरती गाते हुए कहते थे, हे प्रभु ये तन ये मन ये धन सब तेरा, ना लागे कुछ मेरा, जहां पर भी मेरापन है वहां ही स्वार्थ है। और जिन ब्राह्मण आत्माओं ने उस मेरे मेरे को तेरे में बदल दिया, ये सब तेरा है ये सब तेरा है, वो परमार्थ में लग गए। आप सभी ने जहां पर मुरली की पोस्ट जाती है उस लिफाफे पर शायद ध्यान दिया हो, शुरू शुरू में बाबा ने साकार में ही एक लाइन लिखवा दी थी, गॉडली सर्विस ओनली। वो लिफाफे पर खास लिखवाया था कि ये लिफाफा ये पोस्ट जो है ये केवल गॉडली सर्विस के लिए है, ईश्वरीय सर्विस के लिए है। तो आप सभी जो समझते हैं कि ये हमारी जीवन संगम की, जिसमें बाबा ने हमें इतना दिव्य अलौकिक जन्म दिया, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, पिछले जन्म से हम सभी मरजीवा बन गए, उससे मरे इसमें आ गए, ये मरजीवा जीवन, ब्राह्मण जीवन, पवित्र जीवन केवल बाबा के लिए है। जो कुछ हम करें, लौकिक कार्य व्यवहार है या अलौकिक है, उन सब में एक ही भावना है कि मेरे बाबा का नाम रोशन हो। हमारे संकल्पों से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारी चाल चलन चेहरे से केवल बाबा ही दिखाई दे। एक बहुत अंदर का लक्ष्य अगर ब्राह्मण बच्चों ने पक्का किया है तो उसको कहते हैं एक नामी, एक का नाम वाला हो, कुछ भी हम करें लेकिन अंदर से भावना है जिसने हमें ऐसा बनाया, जिसने हम सबको इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतनी श्रेष्ठ महान जीवन बनाई, जिसने हमें इस कलयुग में जीना सिखाया, रहना सिखाया, चलना सिखाया, हमारे हर कर्म से, बोल से, चाल चलन से उसी का नाम रोशन हो। कोई मुझे देखकर ये न कहे आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। सेवाएं करते हुए अगर ये अटेंशन रहता है कि कोई भी आत्मा व्यक्तिगत रूप में मेरे में अटक न जाए, हर एक का संबंध एक बाबा से जुटे, बाबा को पहचाने, बाबा के प्रति अपने आप को समर्पित करे। कई बार हम सेवाएं करते हैं और व्यक्तिगत रूप में इतना स्नेह इतनी पालना दे देते हैं जो सामने वाला केवल उसी आत्मा को ही सर्वस्व मान लेता है, लेकिन जिसने दिया जिसने ऐसा बनाया उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं जाता, उस तरफ वो इशारा भी नहीं करता। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है, कहीं व्यक्तिगत कोई स्वार्थ को लेकर के हम सेवाएं तो नहीं करते हैं, या सेवाएं करते हुए एक भावना है, एक लक्ष्य है, कि हर आत्मा अपना जन्म सिद्ध अधिकार, अपना वर्षा बाबा से लेवे, बाबा को पहचाने, बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पित हो जाए। तो हम सब इस बात पर अटेंशन दें कि जब हमने भक्ति में कहा था तब तो शायद ये नहीं समझा था कि भगवान हमारी इस दिल की बात को सुनेगा भी। तो मूर्ति के आगे कहा और वहां कह करके घर में आए, व्यवहार में आए, वहां कहते थे सब तेरा है और आ करके कहते हैं तेरा भी मेरा है। वहां पर ही बंधन क्रिएट हो जाते हैं, वहां ही स्वार्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से लगे ये सब तेरा है, तेरा है, मैंने तुझको अर्पित कर दिया। लेकिन अर्पित करने के बाद स्वयं बाबा कहते हैं साकार में जब आते कि बच्चे मैं तुम्हारा लेके क्या करूंगा, मुझे कौन से यहां पर महल माड़ियां बनानी है, तुम्हारी शक्तियां जो भी हैं तुमने बाबा को समर्पित किया, बाबा इस अमानत को जो बाबा को दे दी वो संभालने के लिए तुम्हें रिटर्न करते हैं। तो बाबा की दी हुई अमानत ये तन सबसे बड़ी अमानत है, जिस तन के द्वारा आज हम इतनी सेवाएं कर सकते हैं, अनेक आत्माओं को बाबा की दृष्टि दे सकते हैं, बाबा के महावाक्य सुना सकते हैं, हर एक आत्मा को बाबा से मिला सकते हैं, ये तन प्रभु अमानत है। कहीं भी किसी भी व्यर्थ कार्य की तरफ पैर नहीं उठ सकते, इसलिए हम सबको एक बहुत महीन ब्राह्मण जीवन में चेक करना है कि सदा ये तन तेरे लिए है, तेरी सेवा के लिए है। तन माना क्या? एक कर्म इंद्रियां। तन में जो भी कर्म इंद्रियां हैं उसमें केवल हर कर्म इंद्रिय से बाबा का कार्य ही हो, कहीं पर भी ये कर्म इंद्रियां दूसरे काम में न लग जाएं। इसलिए अगर हम सब कहते हैं कि हम स्वार्थ से निकलकर परमार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत गहरी चेकिंग करनी है। हमारी शरीर में आत्मा विराजमान है, ये मंदिर है, आत्मा चैतन्य मूर्ति है, इस मंदिर की संभाल, इस मंदिर की स्वच्छता, इस मंदिर को स्वस्थ रखने का जवाबदार कौन? आत्मा ही है ना। प्रभु अमानत है और इस प्रभु अमानत को अगर हम ऐसे ही अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण, अटेंशन न दे करके अगर इसको ठीक ठाक नहीं रखते हैं तो भी अमानत में ख्यानत है, प्रभु अमानत है। इसलिए इसको सब प्रकार से ध्यान रखना, संभालना, स्वस्थ रखना, बैलेंस से चलना और बाबा के लिए इसके अंदर जो शक्तियां हैं, एक स्मरण की शक्ति है, स्मृति की शक्ति है, दूसरी दृष्टि की शक्ति है, तीसरी वृत्तियों की शक्ति है, चौथी बोल की शक्ति है, पांचवी कर्म की शक्ति है। अब पांचों बातों को हम सब महीनता से चेक करें, पांचों ही बाबा के इस परमार्थ के कार्य में सफल हो रही हैं। क्या हमारी स्मृतियों में केवल एक बाबा ही बसता है? कई प्रकार की स्मृतियां हैं जिसमें स्वार्थ दिखाई देता है, जिसमें व्यर्थ चिंतन दिखाई देता है। अगर पास्ट की स्मृतियां हैं जिसको बाबा कहते हैं भूतकाल, भूतकाल की स्मृतियां, जो बातें देह अभिमान के कारण बीत गई, उस बीती का अगर कोई चिंतन कर रहा है वो भी समर्पित भाव से ट्रस्टी नहीं है। इसलिए हम सबको बाबा ने एक महामंत्र दिया, बच्चे बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो ना आस, संगम का ये वर्तमान हर सेकेंड हर पल बाबा की याद और सेवा में सफल हो। याद और सेवा में सच्चे दिल का स्नेह चाहिए, केवल दिमाग वाली याद भी उतनी सफलता नहीं देती। दिमाग से की हुई सेवाएं अगर सफल भी हो जाती हैं तो भी संतुष्टता नहीं देती। इसलिए ब्राह्मण जीवन में सेफ्टी का साधन, बाबा साकार में कहते थे तुम बच्चों के पास माया से बचने का सेफ्टी का साधन डबल लाख है, और वो डबल लाख है याद और सेवा। सदा ये स्मृति रहे कि संगम युग पर हम सब केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हैं और एक प्रभु की स्मृति में रहने के लिए हैं। सदा उनकी स्मृति बनी रहे, ऐसा श्रेष्ठ जीवन देने वाला जीवन दाता जिसने हम सबको इस पतित दुनिया से, इस तमो प्रधान दुनिया से निकाल कर अपना बच्चा बनाया, जिसने सत्तो प्रधान बनने के लिए, पावन बनने के लिए आत्मा को इतना सुंदर शिक्षाओं से सजाया, ऐसी ऊंची श्रेष्ठ पालना के साथ साथ प्राप्तियां कराई, एक एक बच्चे को संतुष्ट मणि बनाया, संतुष्ट रहना सिखाया, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया, प्रसन्न चित्त बनाया, क्या हमारी स्मृतियों में केवल एक बाबा की ही स्मृति रहती है? किन्हीं देहधारियों की स्मृति में हमारी शक्तियां नष्ट तो नहीं जाती? हद की प्राप्तियों के पीछे किसी देहधारियों में भी अटक तो नहीं जाते? कई बार चलते चलते दादी जानकी एक शब्द कहती थी कि कोई कोई बाबा के बच्चे अटक जाते, लटक जाते, भटक जाते, चटक जाते हैं। चेक करना, बाबा में ही चटके हुए हैं, उसकी याद में ही लटके हुए हैं, या कोई ने थोड़ी सी मदद कर दी, सहयोग दे दिया, स्नेह दे दिया, प्राप्तियां करा दी, देहधारी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर दैहिक आकर्षण है या देहधारियों की आकर्षण है तो यहां स्वार्थ दिखाई देता है, परमार्थ नहीं है। इसलिए इस महीन बात को बहुत गहराई में जाकर के चेक करना, क्या स्मृतियों में बाबा ही रहता है? ख्वाबों में, ख्यालों में एक बाबा ही बसता है, या कोई भी व्यक्ति विशेष बाबा के बीच में इंटरफेयर कर रहा है? हमारी वृत्तियां कहां तक उपराम और अनासक्त हैं? भटकती तो नहीं है? चंचल तो नहीं है? क्या चाहिए वृत्तियों को? बहुत सूक्ष्म वृत्तियां हैं। कुछ दिनों से बाबा की मुरलियों में बहुत ध्यान खिंचवाया जा रहा है, अटेंशन है, दिला रहे हैं बाबा, बच्चे अभी समय ऐसा आया है जो ये वाचा सेवाएं आप कर रहे हो इसका रूप बदल जाएगा, आप सबको अपनी वृत्तियों से वाइब्रेशंस और वायुमंडल बनाना होगा। वृत्तियों से सेवा करने के लिए इन वृत्तियों में जरा भी कोई के प्रति भी व्यर्थ और नेगेटिव न हो। ये वृत्तियां जितनी प्राम हैं, जितनी अनासक्त हैं, निस्वार्थ हैं, निर्दोष हैं, चेक कर। कई बार चलते चलते कहीं स्वार्थ दिखाई देता है, कहीं किसी के दोष दिखाई देते हैं। जब इस ड्रामा के पार्ट में हर एक आत्मा अपना अपना बहुत एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, तो इस ड्रामा के किसी भी दृश्य को, किसी भी सीन को देख करके क्यों, क्या, कैसे प्रश्न तो नहीं उठ जाते। बाबा कहते, बच्चे इस ड्रामा को बनाने वाला डायरेक्टर क्रिएटर कौन, उसको देख करके अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, माना डायरेक्टर को पहचाना ही नहीं है। क्यों क्वेश्चन उठते हैं? कुछ न कुछ राज, कुछ कल्याण, बुराई में भी अच्छाई समाई हुई है। जो इस ड्रामा के इस गुहेतम राज को समझ जाता है, वो निर्दोष दृष्टि रखता है, कोई के दोष उसको नोट नहीं होते। और निर्दोष और निस्वार्थ दृष्टि रखने वाली आत्मा की वृत्तियां बड़ी शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। वही सेवा कर सकता है वायुमंडल को बनाने की। जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, चाहे हमारी समर्पित बहने हैं, चाहे आप प्रवृत्ति के भाई बहने हैं, उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की जवाबदारी किसकी है? किसकी है जो वहां रह रहे हैं? चाहे हमारा मधुबन है, शांतिवन है, किसी स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर जो आत्माएं निवास करती हैं, उनकी वृत्तियां कैसी हैं? क्या वो वृत्तियों में कोई के प्रति भी नफरत की भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, अनुमान की भावनाएं तो भरी हुई नहीं है? और अगर ऐसी कोई भी भावनाएं हैं तो वायुमंडल कैसा होगा? क्या आने वाले को आते ही अनुभव होगा कि यहां भगवान का कार्य चल रहा है, यहां ईश्वरीय कार्य चल रहा है, ये परमार्थ के लिए लोग यहां रहे हुए हैं, या सोचते हैं व्यक्तिगत इनका कोई स्वार्थ है? सेवाएं तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई मान की इच्छा है, शान की इच्छा है, कोई हद की प्राप्तियों की इच्छा है, धन की इच्छा है, किसी भी प्रकार की सूक्ष्म कामनाएं लेकर के यदि आत्मा कुछ कर रही है, वो अपनी वृत्तियों से शक्तिशाली वातावरण नहीं निर्माण कर सकती। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, ये वृत्तियां कुछ नहीं चाहिए, अनासक्त हैं। ये व्यक्ति हमें क्या देंगे? इन व्यक्तियों से हमें किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं? हमारा दाता, वरदाता, भाग्य विधाता हमारे साथ है। सब कुछ उसने हम सबको दिया है, अखुट अखंड प्राप्तियां कराई हैं, एक एक बच्चे को माला माल बनाया है, संगमयुगी ब्राह्मणों का एक गायन है। पहले कहते थे देवताओं के लिए कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वर्तमान समय बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए कहते हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई अप्राप्त शक्ति नहीं, कोई अप्राप्त गुण नहीं, हर चीज से एक एक बच्चा जो जहां भी है। अपने आप को पूछना, अपने आप से बात करना, कोई अप्राप्ति है क्या? अप्राप्ति उस आत्मा को महसूस होती है जो दूसरों से भेंट करता है, दूसरों के भाग्य पर जिसकी नजर रहती, अपने भाग्य पर नहीं दृष्टि डालता। अगर हम दूसरों से कोई अपेक्षा या भेंट रखते हैं, इनको इतने चांस मिलते हैं, इनके पास ऐसे साधन हैं, इनको ये है ये है ये है, मेरे पास नहीं है, तो जितना है उतने में भी वो संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए वृत्तियां अनासक्त तभी हो सकती हैं, उपराम तभी रह सकती हैं, वायुमंडल तभी क्रिएट कर सकती हैं, जब ये अंदर से दिल से निकलता है, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, जो तूने मुझे दिया है वो कोई को नहीं दिया, जितना मुझे प्राप्ति कराई है कोई को भी नहीं है, मैं तृप्त हूं संतुष्ट हूं। तृप्ति संतुष्टता की निशानी है, अतृप्ति असंतुष्ट बनाती है। हम सब अपने आप से पूछें, बाबा के बच्चे बनने के बाद तृप्त हैं, भरपूर हैं या खाली हैं? कहते हैं खाली घड़ा छलकता है, ढोल जो है अंदर से खाली होती आवाज बड़ी करती है। हम सबको बाबा ने संपन्न भरपूर हर गुण से, हर शक्ति से, ज्ञान से, स्थूल और सूक्ष्म रीति से भी कोई चीज की कमी नहीं रखी, सब कुछ दिया है। अपने समान दिया ही नहीं, अपने समान दाता बना दिया, दो बच्चे दो। मैं समझता हूं शायद एक ही ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ही ऐसा स्थान है जहां पर देना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, देना सीखो, दो, जो कुछ तुम्हारे पास है अगर दोगे तो कई गुना होकर के बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा। दूसरे स्थानों पर जाओ तो सबकी नजर होती ये कितना देते हैं, कितना चढ़ाते हैं। मंदिर में भी जो पुजारी होता है उसकी नजर होती है कि आया है बड़ा सेठ लग रहा है, ये कितना चढ़ावा चढ़ाता है। लेकिन बाबा के बच्चों के दिल में रहता है कि जो बाबा ने मुझे दिया है सबको मिले, जैसे भी हम दे सकते हैं, हर एक देने का प्रयास करता है, दृष्टि से देता है, बोल से देता है, अपने अच्छे वाइब्रेशन से देता है, अपने स्नेह से देता है, सबको देने की भावना रहती है, ये परमार्थ सेवा है। इसलिए हम सब स्वार्थ नहीं है कि अगर मैं दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन वास्तव में देना ही लेना है। बाबा ने हम सबको कितना सुंदर विधियां बताई हैं, बच्चे किसी से भी प्यार मांगो नहीं, किसी से भी सम्मान मांगो नहीं, तुम देना सीखो, दोगे तो अपने आप उसका रिटर्न मिलेगा। और दादियों ने सचमुच करके हम सबको सिखाया, दिया दिया देती रही, जैसे भी आया। एक दिन जानकी दादी जी की रमणीक बात सुनाता हूं, मैं अकेले ही दादी जी के साथ बैठा था और दादी के सामने कोई अच्छी बड़े घर की वीआईपी माता आई दृष्टि लेने के लिए, तो दादी मेरे को ऐसे चुपचाप बोलती है, क्योंकि हिंदी नहीं जानती थी, विदेश की थी, ये है तो बाबा की बहुत लाडली बच्ची, बहुत पैसे वाली, लेकिन कभी यज्ञ में इसने सफल नहीं किया। मेरे को कहती है आज इसे सफल कराऊंगी, तो मैं हंसने लगा, मैं कैसे दादी कराएंगे, तुम बैठा रहना बोलना नहीं, चुपचाप देखो। ऐसे आई सामने, दादी ने उसको दृष्टि दिया, बहुत प्यार से उसके लिए दो शब्द उच्चारण किए, स्लोगन दिया, बोली दिया, सेब फल रखे थे फल दिया। फिर कहती है जाओ इसके लिए एक अच्छी शॉल ले आओ, इसके लिए इसके उंगली में देखा अंगूठी नहीं, इसके लिए अंगूठी ले आओ। अरे इतना उसको देती गई, जो अंत में जब वो उठी बाहर आई तो कहती है भाई जी मुझे कोई लिफाफा दे दो, दादी ने मेरे ऊपर इतना बोझ चढ़ा दिया, इतना दे दिया, मैं भी कुछ दे के आऊं। देना सिखाया है बाबा ने, मांगना थोड़ी सिखाया है, मंगता थोड़ी है। बाबा ने तो कह दिया मांगने से मरना भला, मर जाना, मांगना नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। कितना ऊंचा सम्मान दिया, सम्मान दाता बनाया। तो हम सब बाबा के बच्चे अपनी वृत्तियों को जरूर चेक करें, किसी के प्रति भी कुछ नहीं कामनाएं, ये वृत्तियां ऐसी अनासक्त हो जाए, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, सब बाबा देने वाला दाता दे रहा है, अखुट दिया है उसने। दृष्टि कितनी पवित्र है, निर्मल है, रूहानियत से भरपूर है, इस दृष्टि को चेक करो। किसी शरीर पर जाती है, दो ही जगह जाती है, या धन पर जाती है, बाबा कई बार कहते हैं या रूप पर जाती है या रुपये पर जाती है। इसलिए सदा रूहानी दृष्टि, पवित्र दृष्टि, कितनी महान आत्मा है, कितनी भाग्यवान आत्मा है, उस आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, पवित्र दृष्टि का अभ्यास। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं आई हॉस्पिटल खोलता हूं, जिनकी दृष्टि दूषित है, क्रिमिनल है, उसको मैं ऑपरेशन करके सिविल बना देता हूं। तो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम मैं समझता हूं आई हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। हम सब की दृष्टि का, जो दैहिक दृष्टि थी, विकारी दृष्टि थी, किसी न किसी के पीछे देख लिया और लट्टू हो गया, चला गया उसके पीछे, भटक गया, उस दृष्टि को बाबा ने चेंज किया, ऑपरेशन करके सिविलाइज्ड बना दिया। आत्मा को देखते हैं, आत्मा की विशेषताओं को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, वाह बाबा वाह, क्या इसको गुणवान बनाया है, क्या इसको शक्तिशाली बनाया है। दृष्टि पर हमारी नजर, दृष्टि से उसकी सृष्टि पर नजर जाती है। तो सभी अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, और चौथी बात है बोल। बोल बड़े अनमोल हैं। आप सब चेक करना, क्या बाबा के द्वारा बताई हुए बोल, बाबा की ही मधुर वाणी, जो बाबा की शिक्षाएं हैं, इस बोल से उसके सिवाय और कुछ भी ना निकले। मैं इस बात पर बहुत अटेंशन देता हूं पर्सनल, कि बाबा के सिवाय न कहानियां सुनानी है, न किस्से सुनाने, न इधर की बात सुनानी, न उधर की बात सुनानी। बाबा तूने जो मुझे सुनाया है वही मुझे सुनाना है, और इतना सुनाया है भगवान ने, इतना दिया है दाता ने, कभी बाबा के महावाक्यों को ध्यान से सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, क्या नहीं पढ़ाया है, क्या नहीं सिखाया है, कौन से ऐसे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सारा सार, सारा मक्खन बाबा के महावाक्यों में मिला हुआ है, भरा हुआ है। ध्यान से पढ़ के देख लो, पूरी गीता भगवान के मुरली में है, एक ही मुरली के अंदर। आज की मुरली उठा के देख लो, क्या बाबा की शिक्षाएं हैं, कितना प्यार से एक एक बच्चे का श्रृंगार कर रहा है। बच्चे कभी भी देह अभिमान में आकर के सांडे जैसे नहीं बनना, गिरगिट नहीं बनना, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, कल बाबा कहते छुई मुई नहीं बनना, आज कहते गिरगिट नहीं बनना। कितना छोटा छोटा उदाहरण दे करके बाबा अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है ना अच्छा काम, सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं, कोई उसको जरा भी इशारा भी दे दे, करेक्शन भी कर दे, इतना अहंकार आ जाता है, ये कौन होता है, मैं अनुभवी हूं, मैं पुराना हूं, मेरे पास इतने पढ़ाई का अनुभव है, दुनिया का अनुभव है, ये कल की आई हुई, कल का आया हुआ मुझे करेक्शन कर रहा है। वो गिरगिट की जैसे ऐसे अहंकार में अपना रूप बदलता है। बाबा कहता बच्चे नम्रचित बनो, निर्माणचित बनो, कराने वाला करा रहा है, क्या अहंकार रख रहे हो, कौन कर रहा है इतना बड़ा यज्ञ, कौन चला रहा है, कोई व्यक्ति है क्या, बैठा है कोई जिसके ऊपर हम कहें ये चला रहा है, ये प्रभु लीला चल रही है, कराने वाला करा रहा है। अगर हम अपनी शक्ति से सोचेंगे मैं कर रहा हूं, तो जितनी मुझ आत्मा की शक्ति है उतनी सफलता मिलती है, लेकिन अगर मेरे साथ बाबा स्वयं सर्वशक्तिमान कंबाइंड है और वो करा रहा है, वो चला रहा है, उसके लिए हम हैं, तो हजार गुना क्या पदम गुना सफलता हो जाती है। सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। आज लौकिक रीति से भी कोई का साथी कोई पद पर हो, पोजीशन पर हो, कोई शक्तिशाली हो, वो निश्चिंत रहता है, चिंता नहीं करो, मेरा साथी इतना शक्तिशाली है, इतने ऊंचे पद पर है, तुम्हारा काम भी करवा दूंगा मैं। और हम लोगों क्या नशा है, हमारा साथी कौन है जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है, स्वयं भगवान, सर्वशक्तिवान, सर्व समर्थ, हजार भुजाओं वाला। सिर्फ दिल से उसको प्यार से कहो मेरा बाबा, बस लग गई चाबी, मेरा बाबा, तेरा नहीं मेरा बाबा। कहते हो सभी, एक बार बोलो मेरा बाबा, दिल से बोलो मेरा बाबा है, सच्ची सच्ची बोल रहे हैं ना कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। और जब मेरा बाबा कह दिया तो बाबा फिदा हो जाता बच्चों के ऊपर, क्योंकि भोला नाथ है ना, भोलों का नाथ है, खुद भोला नाथ नहीं है, भोलों का नाथ है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सभी ध्यान देना, ये बोल बड़े अनमोल हैं, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, एक एक बोल पर कंट्रोल। अगर कहीं पर भी कोई भी संबंधों में टकराव पैदा होते हैं, संबंधों में दूरी बढ़ती है, उसका मूल कारण केवल केवल वाणी है, बोल है, बोल दिया निकल गया, सोचा नहीं, अरे सोचा ही नहीं तो निकला कैसे। अगर सभी ब्राह्मण आत्माएं, सभी बाबा के बच्चे अमृत वेले से रात सोने तक जो कुछ बोलते हैं उसका चार्ट रखें, क्या ये बोल गिनती किए जा सकते हैं, ये सत्य वचन हैं, या जो आता है जब आता है बोल देते हैं, कहते हैं बोल ऐसे हैं जैसे तीर के जैसा लग गए जा करके, घायल कर दिया किसी को, स्थिति अपनी क्या दूसरों की भी बिगाड़ दी, शायद उस तीर से इतना बड़ा घाव नहीं होगा जितना ये बोल घाव कर देता है, सदा के लिए संबंध टूट जाते, दूरी बढ़ जाती, संगठन टूट जाते। आज के इस दिन पर, शुभ दिन पर, आप सभी संकल्प कर सकते हो जो बैठे हैं क्लास में, कम से कम एक मास के लिए प्रतिज्ञा करके जाना, एक भी बोल किसी भी आत्मा को दुख देने वाला, किसी भी आत्मा को डिस्टर्ब करने वाला न बोल करके, मधुर बोलेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सम्मानजनक बोल ही बोलेंगे। हो सकता है ऐसा किया जा सकता है, अगर एक मास के लिए भी सब प्रतिज्ञा कर लो कि बाबा के सिवाय, बाबा के ज्ञान के सिवाय मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तब बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा परमार्थ के मार्ग पर है, नहीं तो स्वार्थी है। पांचवी बात कर्म है, जो भी कर्म हम सब कर रहे हैं, क्या उन कर्मों को श्रेष्ठ कर्म की श्रेणी में लाया जा सकता है, कह सकते हैं ये कर्म संगम युग श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का समय है। ये श्रेष्ठ कर्म ऐसा बीज है कि अगर हमने बो दिया तो पूरे 21 जन्म तो गारंटी है, लेकिन 84 जन्म ही इस बीज का फल, सदा सुख शांति आनंद प्रेम में जीवन बीतेगी। इतनी इस समय के कर्मों की वैल्यू है। हम कर्म कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म संन्यास होता नहीं। क्या जो कर्म मैं कर रहा हूं, आज भी बाबा ने कहा बच्चे जो कर्म करोगे आपको देख करके सब करेंगे। चाहे हम आलसी हैं, अलबेले हैं, बाबा तो बच्चों के कान ऐसे पकड़ता है, मैं मुरली पढ़ता हूं कहता हूं वाह बाबा क्या क्या सिखाता है, बच्चे मगरूर बन गए हैं, 6 बजे सो करके उठते हैं, नवाबी चलाते हैं दूसरों को, क्या बाबा एकदम जैसे बाप बच्चे को शिक्षाएं देता है, ऐसे ही हमारा बाबा कितना मीठी मीठी शिक्षाओं से सजा देता है सवेरे सवेरे। हम सब देखें हम क्या कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या, हमारे जो भी बोल संकल्प कर्म चलन जो भी है वो कर्म में आती है, वो कर्म रूपी बीज इतना शक्तिशाली संपन्न है जो उस कर्म का अच्छे से अच्छा फल मिले। श्रेष्ठ कर्म की व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? कर तो हम सब रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, मन वाणी कर्म लगा रहे हैं, सब कुछ बाबा तेरा 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 कह रहे हैं, क्या वो तेरा कहने वाला भी कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा? श्रेष्ठ कर्म तभी कहलाएगा जब उसमें कर्तापन का भान नहीं होगा। किया कर्म इंद्रियों से किया, बाबा शुक्रिया तूने कराया, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो कौन करता, एक बहुत सूक्ष्म अभिमान दिखावा। अगर नहीं पूर्ति हुई, मुझे नहीं पूछा गया, मैंने इतना किया, मेरी प्लानिंग ऐसी, मेरे कारण ये सेवाएं विस्तार को पाई, मेरे कारण ये सेवा केंद्र बन के तैयार हो गया, और धीरे धीरे वो अहंकार बढ़ता जाता है, थोड़ा अपमान हो जाता है, पता नहीं वो कहाँ का कहाँ चला जाता है, वो श्रेष्ठ कर्म कहाँ चला गया? किया इतना अच्छा काम, भगवान के काम में परमार्थ में अपना धन लगाया, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाया। कई बार बाबा कहते हैं देख तुम्हारी मम्मा मातेश्वरी एक पैसा नहीं लाई, धन समर्पित नहीं किया और धन देवी बन गई, सब उसी से धन मांगने लगे, लक्ष्मी बन गई, श्री लक्ष्मी कहलाई। क्या श्रेष्ठ कर्म किया? संगम पर थोड़े से संगम के समय में इतने श्रेष्ठ कर्म कर लिए जो पूरे कल्प में भक्त लोग आज भी दिवाली पर श्री लक्ष्मी के लिए कितना सफाई करते हैं, कितना आवाहन करते हैं, कैसे दिल से पूजा करते हैं, धन आएगा धन आएगा, वो धन देवी बन गई। केवल एक ही बात बाबा ने एक बार सुनाया था, तुम्हारी मम्मा ने कभी भी जो कुछ किया, कभी ना अपनी महिमा स्वीकार की ना कोई चीज स्वीकार की, और सदा ही कहा प्रभु प्रसादे भगवान करा रहा, मैं क्यों कर रही हूं। इतनी गंभीरता की देवी बन करके रही जो अपने किए हुए कर्मों का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया, और किया क्या, इतना बड़ा यज्ञ, इतने विघ्न इतनी बाधाएं उनको पार कराते हुए यज्ञ की नाव को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक शेरनी की तरह रही, एक पवित्रता की देवी बन करके रही यज्ञ में, कुमारी होते हुए भी मात्र स्नेह दे करके इतने बच्चों की पालना की, लेकिन इतने सब श्रेष्ठ कर्म होते हुए भी कहीं भी उन श्रेष्ठ कर्मों की व्याख्या नहीं दे दी, मैंने किया है, गुप्त, बहुत गुप्त, गुप्त योगी, गुप्त तपस्वी, दो दो बजे उठ के तपस्या की, एक बाबा ही दिल में और कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की कला विद्या स्वयं भगवान ने अपने बच्चों को सिखाई है। इस समय तो ध्यान देना, एक का नाम बाला हो, एक का नामी, दूसरा जो कुछ है संकल्प बोल कर्म धन संपत्ति उसमें बहुत इकोनॉमी है, जरा भी एक भी पैसा व्यर्थ न खर्च हो, एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए, एक शक्ति व्यर्थ न जाए, जो कुछ है भगवान के काम में सब सफल हो जाए, परमार्थ में लग जाए, वो है इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी, इकोनॉमी माना कंजूसी नहीं, लेकिन जहां पर भी व्यर्थ खर्च हो रहे हैं उनको बचाओ और ईश्वरीय सेवा में लगा दो, ये बाबा के काम में है, बाबा के लिए है। तो एक नामी इकोनॉमी, और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय, एक मत, जब तक हमारे इस परिवार का संगठन एक मत के सूत्र में नहीं बंधेगा तब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। हम सब बाबा के बच्चे अंडरलाइन करें, जैसे दादियों ने एक होकर के दिखाया, एक ने कहा दूसरे ने माना, सदा नम्रता का अवतार बन करके रही, सहनशीलता का अवतार बन करके रही, कभी भी मतभेद में नहीं आई, टकराव पैदा नहीं किया, एक होकर के रही, तब इतना बड़ा संगठन आज तैयार हुआ है। और ये संगठन अगर एक हो जाएगा तो बाबा का नाम रोशन हो जाएगा, और आज कल नहीं आज ही बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ऐसी सुभावना है, यही सुभावना है कि अब बाबा की सभी बच्चे एक मधुर बोल पर बहुत अटेंशन देना, और दूसरा झुक करके नम्र होकर के निर्माण चित बन करके सबकी दुआएं लेते हुए एक मत संगठन बना करके बाबा का नाम रोशन करना। ओम शांति।